అంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆయిరియాణం నమో వజ్రాయాణం సాహూణం ఏషో పంచ నమో యారో సౌవ పావ పణాసనో మంగళాణం చ సవ్వేసిం పఢమం హవై మంగళం పఢమం హవై మంగళం పంచ పరమేష్ఠి భగవాన్ కీ అహింసా పరమో ధర్మ కీ ఆచార్య గురువర్ శ్రీ విద్యాసాగర ముని మహారాజ్ కీ लोकमूर्ता का प्रकरण लगभग पूर्ण हो गया। लोक में प्रचलित मिथ्या मान्यताएं जो होती हैं, उन मिथ्या मान्यताओं को धर्म समझना, धर्म समझ करके उनका अनुसरण करना, उनका आचरण करना और उनकी अनुमोदना करना, उसका सहयोग देना इत्यादि, ये सभी सम्यक दर्शन के लिए दोष उत्पन्न करने वाले कार्य हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने सम्यक दर्शन को निर्मल पालन करने का प्रयत्न करता है, निर्दोष पालन करना चाहता है, तो प्रतिपल वह सावधान रहता है अपनी क्रियाओं में। क्या करने से सम्यक दर्शन मलिन होता है, क्या करने से सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है इत्यादि वह सतत चिंतनशील रहता ही है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले रत्नत्रयधारी मुनि और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाले श्रावक, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक, ये तीनों प्रकार के श्रावक अपने सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न होने नहीं देते। सम्यक तो जीवन का प्राण है, उसको कलंकित नहीं करते, उसको दूषित नहीं करते। सम्यक दर्शन प्राण है, वह यदि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। धर्म सुरक्षित है तो आत्मा सुरक्षित है। धर्म को आत्मा ने खो दिया है तो आत्मा सुरक्षित नहीं है, प्राण चले गए। आत्मा के प्राण चले गए तो आत्मा क्या है, डेड बॉडी है। आत्मा का भी मरण है, यदि उसमें वह जीवित नहीं है, यानी उसके जो प्राण है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनका स्वभाव है, स्वरूप है, उसका उसके पास उसका स्वरूप सुरक्षित नहीं है तो डेड बॉडी है। जैसे इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये डेड बॉडी नहीं है शरीर, और आत्मा निकल गई तो ये डेड बॉडी, प्राण निकल गई कहते हैं। तो इसमें मुख्य प्राण आत्मा है, शरीर में जब तक आत्मा है तब तक वो जीव कहलाता है। जब वह मुख्य आत्मा प्राण वो निकल गया तो जैसे शरीर को हम डेड बॉडी कहते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अगर आत्मा के भीतर नहीं रहे तो आत्मा डेड बॉडी जैसा ही है, किस काम का है वो। अपने को खोया हुआ, अपने को भूला हुआ, अपने से भटका हुआ, अपने को ही दुख में डालने वाला आत्मा होश में नहीं बेहोश में है, प्राण नहीं डेड बॉडी है। तो आत्मा की साधना रत्नत्रय से होती है। आत्मा के भीतर सदा सम्यक तो सुरक्षित रहे, उसमें सदा सम्यक ज्ञान बना रहे, सदा उसका आचरण अपना स्वभाव में वह जीवित रहे, अपना आचरण करता रहे, यह बात धर्म की बात कहलाती है। केवल शरीर जा रहा है, मंदिर जा रहा है, इसका नाम धर्म नहीं। मंदिर जाने वाले इस शरीर में जो आत्मा है उसमें सम्यक दर्शन है या नहीं, उसमें सम्यक ज्ञान है या नहीं, सम्यक चारित्र है या नहीं, इन तीनों के होने से धर्मात्मा कहलाता है। और इन तीन में से कुछ भी नहीं है तो हम डेड आत्मा को मंदिर ले जा रहे हैं। और हजार करोड़ों भाव तक भी ऐसा इस डेड आत्मा को धर्म करा दो, मंदिर का दर्शन करा दो, कुछ भी कार्य सिद्धि नहीं होगी। मूढ़ताएं तीन प्रकार की, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। मूढ़ता यानी अज्ञानता, अज्ञानता के कारण ही आत्मा डेड माना जाता है। उस अज्ञानता को अपने में से दूर करेगा तो जीवित है। संसार में कितनी आत्माएं डेड हैं जरा विचार करो और कितनी जीवित हैं जरा विचार करके देखें, कोई दिखाई नहीं देता, सब डेड ही डेड, डेड ही डेड, डेड स्मशान ही है, ये डेड बॉडियां हैं केवल। इसमें जो धर्म धारण करने का साहस करता है वो जीवित होता है। आत्मा को धर्म से युक्त कर देता है वह जीवित होता है। लोक मूर्ता में क्या क्या आते हैं देखें, किस किस को लोक मूर्ता कहें, बहुत सारे हैं। सारी लोक मूर्ताएं हैं, देखा देखी जो भी किया जाता है और उसमें धर्म होता है क्या नहीं, ये विचार किए बिना जिस कार्य को भी किया जाता है वो सब लोक मूर्ता के कोटे में डाल देना। बहुत सारी हैं, उनको गिन नहीं सकते। कोई नदी में स्नान करने से पाप कर्म दूर होते हैं ऐसा समझता और नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानता है। ये क्या है? ये भी लोक मूर्ता। वो क्यों मान रहा है? तो पहले पासुन ऐसी लोग कहते थे, इसलिए हम करके देख रहे हैं कि उससे पाप कर्म नाश होते हैं क्या नहीं, करके देख रहे हैं। देखो, करके देख लो, हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन विचार नहीं करते। यदि नदी में स्नान करने से पाप कर्म धुल जाए तो मेंढक तो सदा ही उसमें रहता है, सबसे पहला मोक्ष उसको मिलना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करते, तर्क नहीं करना। पहले पासुन हमारे जो बुजुर्ग करते वो गलत हो सकता है क्या? अरे तुम्हारे बुजुर्ग जो कर चुके वो गलत न होता तो बुजुर्ग से पहले मेंढक मोक्ष जाता। न बुजुर्ग को कोई मोक्ष हुआ है, न मेंढक कभी मोक्ष गया, न मछलियां मोक्ष गई हैं, और फिर भैंस को भी मोक्ष होना चाहिए। फिर वो तो नदी में बैठी रहती है, गर्मी में ले जाओगे तो बाहर आना नहीं चाहती। ये लोक मूर्ता की बातों को धर्म समझना या कर्म निर्जरा का कारण समझना, पवित्र होने की कल्पना करना, इसी को अज्ञानता कहते हैं। मूर्ता यानी अज्ञानता। अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसी बातों को मान करके अपना आचरण बनाता है, उसमें परड़गी छोड़ना। पानी में क्यों? क्या रोटी ज्यादा हो गई थी क्या? हाँ, इस उद्देश्य छोड़ दो, बेचारी मछलियां खा जाएं, मेंढक खा जाएं, पेट भर ले उनका तो दया कहलाएगी। नहीं, छोड़ना तो धर्म है। पहला पासुन बुजुर्गों ने कहा है कि इसको छोड़ना ही चाहिए, जिससे नदी देवता शांत रहती है। गलत है। देवता के नाम से, किसी देव के नाम से तुम वो छोड़ते हो तो देवता को तुम कौन सा आहार ही मान रहे? कौलाहारी। और देवता लोग कौन से आहारी हैं? मांसाहारी, अमृताहारी। उनके कंठ में अमृत झरता है, वो आहार उनका है। और हम क्या समझ रहे हैं उनको? देवता तृप्त होगा, छोड़ रहे हैं। तो गया हो, एक रोटी बर्बाद हो गई। क्या छोड़ते हैं? पोली छोड़ते हैं क्या? पोली स्पेशल बना करके छोड़ते हैं। उसी पोली को एक गरीब के लिए दान दोगे तो तुम्हारा धर्म कहलाएगा वो, दयादान। ऐसे कितने कितने सारे हैं। जैन मंदिरों में भी ये मूर्ताएं चल रही हैं। देव को कौलाहारी बनाया जा रहा है। अरहंत भगवान ने उपदेश दिया कुछ है और ये कार्य कुछ होते हैं। कौलार देवता के सामने केला रख रहे हैं, देवता के सामने चावल उड़ी भर रहे हैं, ये क्या खाएंगे पका करके? वो उठा के खाएंगे। तो ये कैसे शुरू हुआ? पहला पासुन। पहला पासुन हमारे घर में भी ऐसे करते थे और हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी लोकमूर्ता है। जो जिनवानी के अनुसार नहीं बैठता वो सभी कार्य लोक मूर्ता की कोटी में रख दो। एक दो डब्बा बनाओ, एक डब्बा धर्म का और एक लोक मूर्ता का, और शास्त्र पढ़ते जाओ उसमें क्या आया क्या नहीं आया। जो नहीं आया उसको इस डब्बे में डालो उसको इस डब्बे में डालो, और जो आता है उसको इस डब्बे में डालो। इस डब्बे में जो बच गए उसका आचरण करना, और बाकी सब आचरण लोक मूर्ता की कोठी में रख करके उसको फेंक के आना, म्युनिसिपैलिटी डब्बे में फेंक के आना उनको, उसके लायक है। सम्यक तो विनाशक क्रियाएं कभी नहीं करना चाहिए। जिंदगी धर्म करने के लिए मिली है और नकली धर्म कर रहे हैं। धर्म के नाम से सब लोक मूर्ताएं चल रही है। लोक मूर्ता तो है ही, कुछ काल परिस्थितिवश कुछ घटनाएं घटी थी, उस समय जो क्रियाएं की जाती हैं वो कंटिन्यू हो गई, वो कालांतर में लोक मूर्ता कहलाती हैं। उस समय के लिए ठीक है, वो किसी परिस्थितिवश किया गया होता है, उसको लोक मूर्ता की कोटी में नहीं रखते। बाद में अगर उसका फॉलो आप करते हैं और वो धर्म से कोई संबंध नहीं रखता, लोक मूर्ता की कोटी में रखा जाएगा, उसका कोई सहयोग नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विकास में उन क्रियाओं का कोई सहयोग नहीं, कोई संबंध नहीं है, तो उन क्रियाओं को लोक मूर्ता के डब्बे में डालना ही चाहिए। दो डब्बा बना के रखना स्वाध्याय करते समय, मैं इसको छानूंगा, छान करके जो जिनवानी जिनवानी है वो नीचे जाएगी और जो ऊपर ऊपर रहेगा वो लोक मूर्ता के सिद्धांत से परीक्षित करना हर बात को, तब कल्याण होता है। कल्याण का मार्ग कहां भटक जाता है, हम बहुतों के बीच में रहकर बहुतों की तरह होते हैं, यहां हमारा कल्याण का मार्ग भटक जाता है। बहुतों की तरह बहुतों के बीच में रहकर विचार नहीं करते हैं, वहां भटक जाता है। विचार यदि करते भी हैं तो उल्टे सीधे विचार कर लेते हैं, वहां भटक जाता है। कैसे विचार कर लेते हैं उल्टे सीधे, हाँ इतने लोग करते हैं, क्या पागल हैं क्या ऐसा विचार करते हैं, सिद्धांत से विचार नहीं करते। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा और उसके अनुकूल ये क्रियाएं है क्या नहीं, ऐसा विचार तुलनात्मक विचार नहीं करते, जिनवानी से उसकी तुलना नहीं करते। हाँ ये जब पागल है क्या सभी, ये पागलों में से एक ज्यादा पागल और शामिल होना चाहता है, पागल बन के उसमें जा रहा, पागल ही तो है। हाँ इतने समय से ये मंदिर में है, ये असत्य हो सकता है क्या, है क्यों फिर वो, बस इतना। ये कुतर्क कहलाता है, ये अज्ञान का विचार कहलाता है। आप अपने विचार को जिनवानी के आश्रय लेकर के करोगे या दुनिया को ही आधार बना करके विचार करोगे, दुनिया को आधार बनाया ही नहीं जाता। धर्म करना हो तो दुनिया की क्रिया और दुनिया के लोगों को आधार बना करके विचार किया ही नहीं जाता। कैसे विचार करना, जिनवानी पढ़ना, उसके अनुरूप दुनिया चल रही क्या नहीं, दुनिया की क्रियाओं की परीक्षा करो जिनवानी से, यहां जैसा है वैसा दुनिया है क्या नहीं, दुनिया की क्रिया वैसा है क्या नहीं। अगर नहीं है तो दुनिया गलत है, जिनवानी ठीक है। रत्नकरंडक सावकाचार ग्रंथ एक पर्याप्त है आपको सम्यक दर्शन सुरक्षित रखने के लिए। उसकी एक एक लाइन पढ़ो, उसमें जितना है उतना ही करो, बाकी सभी दुनिया की जो क्रियाएं हैं वो इसमें है कि नहीं देखो, यदि है तो सम्यक दर्शन है, सम्यक तो पूर्ण है, नहीं है तो कैंसिल कर दो, एक झटके में कैंसिल करना चाहिए, भयभीत नहीं होना कहीं से। धर्मात्मा धर्म के प्रति इतना राग रखता है, अनुराग रखता है, कल्याण के प्रति इतना समर्पित है, तो उनको छोड़ने में देर लगती? ये किसी मुनि महाराज को वैराग्य, गृहस्थ को वैराग्य हो गया तो घर छोड़ने में देर लगती उनको? वैराग्य होते ही घर को ऐसा समझने लगता है कि ये मेरे नहीं है, कोई भी परिग्रह इससे कोई मतलब नहीं, राग गिर गया होता है, राग वहीं पर छूट गया होता है, सिर्फ उनको क्या करने की जरूरत रहती है, संकल्प लेने की जरूरत रहती है। उसको वैराग्य होते ही कोई भी वस्तु से उसका मोह रहता ही नहीं, वैराग्य होने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, हाँ हम 50 साल से यहां थे तो सब भोगते आए, एकदम से कैसे छोड़ सकते, वैराग्य होने के बाद भी ऐसा सोचता है क्या? वैराग्य का मतलब यह है कि समर्पित हो गया, वो चारित्र रूपी धर्म को पालन करने के लिए, साधु मार्ग पर निकलने के लिए बिल्कुल एकदम समर्पित हो गया। समर्पित होने के बाद घर में रह रहा है तो कैसा रहता है? वैसा रहना चाहिए, हमारा सम्यक दर्शन। श्रावक सम्यक दर्शन कैसे पालन करे? लोक में रहते हुए भी, लोक की सारी इन मूर्ताओं को देख करके भी जिनवानी से प्यार करो और जिनवानी से उन क्रियाओं की तुलना करो और जिनवानी से समर्पित होकर के रहो और उन सब क्रियाओं को विसर्जित करो, ये मेरे नहीं है, क्योंकि दुनिया जिनवानी नहीं है, जिनवानी अलग है, दुनिया अलग है, दुनिया की क्रिया अलग, जिनवानी की क्रिया अलग, मैं जिनवानी की क्रियाओं को अपने जीवन में उतारूंगा, बाकी शेष पर है, बाकी शेष संसार है, ये लोक मूर्ता संसार में खींच के ले जाता है मेरी आत्मा को, सारे पाप कर्मों के बंध के लिए कारण पहला गुणस्थान है, 148 कर्मों का बंध वहीं पर है, इस मूर्ता के कारण से तो हमारा पहला गुणस्थान है, और वो 41 कर्म जो आ रहे हैं वो इसी के कारण से तो है, मूर्ता के कारण, कहीं अनायतन के कारण, कहीं शंकादि दोष के कारण, कहीं 8 मदों के कारण ये पाप कर्म बंद रहे। 41 पाप कर्मों को रोकने का क्या पुरुषार्थ है? तो ये 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन पालन ही हमारे 41 कर्मों के बंध से रोकता है। कर्मों का संवर कैसे करें, निर्जरा कैसे करें, कर्मों से मुक्त कैसे हों, ये चिंतन सम्यक दृष्टि जीव को सतत रहता है। कर्म बंध से कैसे हम बचे, कर्म बंध से कैसे हम बचे, यही विचार करता रहता है। और अज्ञानी क्या विचार करता रहता है? सच्चे धर्म से हम कैसे बचे, सच्चे धर्म से हम कैसे बचे, झूठे धर्म क्योंकि बहुत आसान है, कहीं भी जाओ स्वागत करते हैं लोग, कहीं भी जाओ स्वागत, और आसान है वो, आप नहीं भी जाते हैं तो बुलाने आते हैं कार गाड़ी लेकर, आओ, लेकिन सच्चे धर्म के लिए बुलाने के लिए कोई आए तो फिर जो वो बुलाने आए हैं नकली धर्म कराने के लिए, तुमको संसार में डुबोने के लिए आए हैं, तुमको 41 कर्म पाप कर्मों को भेंट में देने के लिए आए हैं, जाओ। खुद मूड है, दूसरों को भी मूड बना रहे, जाओ। 41 कर्म पाप कर्म चाहिए हो तो जाओ बांधो। सभी बहुत सारे सभी क्रियाओं को हाँ सात सोड़न काय कराच नहीं, ये तो ये चर्चा चल रहा है। देव मूर्ता लौकिक फल व वरदान की इच्छा से रागी देवों को भजना। देखो एक और बात ध्यान में रखना कि ये करूं क्या नहीं, वो करूं क्या नहीं, किससे पूछूं, महाराज से पूछूं क्या, लोगों से पूछूं, इस चक्कर में मत रहा करो। रत्नग्रंथ सावकाचार है आपका, संविधान ग्रंथ है, उस संविधान में अगर बैठता है वो तो उसको करना, नहीं तो स्वयं निर्णय लेना कि ये गलत है। उसमें अगर नहीं है तो स्वयं निर्णय लेना कि ये कार्य गलत है और ये ग्रंथ में आया नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। कोई कोई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज एक 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 चीज पूछने के लिए मेरे पास आते हैं। महाराज फिर परड़गी छोड़ना चाहिए कि नहीं, मिथ्या तो छोड़े हैं तो वो करना चाहिए कि नहीं, पागल कहां के, कहां तक कौन कौन से हजार बातें पूछोगे, हजार दिन चाहिए, एक एक याद आएगा और एक एक दिन छोड़ोगे तो हजार हजार दिन चाहिए उनको पूछने के लिए। टाइम खराब नहीं करना, जिनवानी पढ़ना। रत्नकरण श्रावकाचार में इन हजार बातों में से कोई भी बात आया है तो उतना ही करना, नहीं आया है तो हजार बात कोई भी नहीं करना, सब लोग मूर्ता की कोटी में रख के चलो। दो डब्बा बनाओ उसमें डाल दो, कोई भी बात आए रत्नकरण श्रावकाचार खोल दिया, उसमें है क्या देखना, उसमें नहीं है, उसमें है क्या, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की चर्चा है, असली धर्म की चर्चा है। और उन तीन प्रकरणों में, सम्यक दर्शन का प्रकरण, ज्ञान का प्रकरण, चारित्र का प्रकरण, तीन प्रकरण में कहीं भी ये क्रियाएं उल्लेखित हों तब तो हमें करना चाहिए, ये है ही नहीं। महाराजों से पूछते हुए भटक जाओगे तो रास्ते पर नहीं लगोगे। एक महाराज ऐसे कहेंगे, एक महाराज वैसे कहेंगे, तुम और भटक जाओगे। जिनवानी से पूछो, जिनवानी से ही रत्नगण श्रावकाचार्य से पूछो, किसी से मत पूछो। महाराज भी दो प्रकार के हो गए हैं, एक अज्ञानी महाराज, ये ज्ञानी महाराज। ज्ञानी महाराज में भी दो प्रकार के हो गए हाँ, बहुत एक चार्ट बनाओ और उनको भी डिब्बे में डालो, दो डब्बा बनाओ हाँ? हाँ दो डब्बा बनाओ, उसमें ऑटोमेटिक लक्षण पहचानना, उस डब्बे में डालना और लास्ट में जो बचते हैं वो ठीक महाराज। महाराजों को भी नहीं छोड़ना, तुम दया करोगे छोड़ोगे सबको महाराज समझोगे, ये भी एक लोक मूर्ता ही कहलाएगी। सब महाराज को महाराज कहते रहोगे, विनय से देखते रहोगे, आदर से देखते रहोगे और धर्मात्मा के रूप में, गुरु के रूप में ही सबको देखते रहोगे, ये भी एक लोक मूर्ता है। गुरु की भी परीक्षा करो, शास्त्र के अनुसार कौन बोल रहा है ये पहले देखो। और गुरु परीक्षा के लिए शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पढ़ो रत्नकरण साहु का चार, उसमें गुरु का जो स्वरूप लिखा है पढ़ो और वैसे गुरु को चुनाव चुनाव कर लो। लक्षण यहां देखो और वो लक्षण जिस गुरु में घटित होते हैं उन्हीं को स्वीकार करना। बाकी गुरु कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी फेमस हो, यहां कीमत नहीं। धर्म के क्षेत्र में उनकी कीमत जिनके पास धर्म है, सत्य है। सबको डिसमिस करना पड़ता है। यहां राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं। ये हमारे महाराज, ये तुम्हारे महाराज, ऐसे पक्षपात नहीं है। हमारे वही जो रत्नकरण सावकाचार में लिखा है उस लक्षण के अनुसार जिनकी चर्या दिखती है, जिनके आचार विचार दिखते हैं, वो हमारे। बाकी सब पराये, बाकी से कोई मतलब नहीं, लेन देन नहीं। बाकी सब लोक मूर्ता के डिब्बे में डाल दो उनको। हाँ, सब एक डब्बा बना हुआ। मन में विचार करो, उस डब्बे में डालो। नाम लेने की जरूरत नहीं, लक्षण देखने की जरूरत। नाम से कोई मतलब नहीं। गुण और दोष देखो, दोष हो डब्बे में डालो। चलो आगे। नाम मत देखो, रिश्तेदारी मत देखो, ये हमारे रिश्तेदार थे पहले, ये भी मत देखो। धर्म मार्ग में कोई रिश्तेदार नहीं होता। गुणवान हमारा रिश्तेदार, दोषवान से हमारा रिश्ता नहीं, रिश्ता भी नहीं और आस्था भी नहीं। ऐसा करना पड़ता है तब कहीं जाकर के हमारे आत्मा में धर्म जीवित हो पाता है, कल्याण हो पाता है। भगवान के पांच कल्याणक हो गए, हमारा एक कल्याणक तो हो, सम्यक दर्शन आ जाए, सम्यक दर्शन से आत्मा का कल्याण हो जाए। पंच कल्याणक में भगवान के कल्याण करने दौड़ते लोग, उनके पांच कल्याणक करके आते और ये एक भी कल्याण नहीं करते। जो स्वयं का कल्याण नहीं करता, दूसरे का कल्याण करने का अधिकारी होता है। जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, क्या अधिकार है भगवान को दीक्षा कल्याण करा सकता है? वो गृहस्थ मुनि दीक्षा दे सकता है क्या? दे सकता? और मुनि परिग्रही है, आंखों से देख रहे हैं कि परिग्रह है, न सम्यक दर्शन दिख रहा है उनमें। सम्यक का आचरण नहीं, ज्ञान का आचरण नहीं, चारित्र का भी आचरण नहीं दिख रहा है। और वो भगवान का कल्याण कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं। दीक्षा देने का अधिकारी है वो। जिसके पास धर्म नहीं दे सकता। जिस वस्तु को दे रहे हैं हम दूसरे को, वो हमारे पास होना चाहिए। कपड़े का दुकान हो तो कपड़ा ही देते आप, बोर्ड पर लगा है दुकान के वस्त्र भंडार। उस दुकान में लोग आए, तेल दोगे तो तेल दोगे या कपड़े दोगे? कपड़े दे, जो है वो देने। दुकान में माल होना चाहिए। हमारे दुकान में जो माल होता है उसी को हमें दान में देना चाहिए। इसलिए कहा गृहस्थ मुनि दीक्षा नहीं दे सकता। मुनि श्रावक को श्रावक के आचार विचार दे सकते हैं, पर श्रावक मुनि को मुनि का आचार विचार दे सकते हैं क्या? दान में नहीं दे सकते, मुनि दीक्षा नहीं दे सकते, पर श्रावक दीक्षा मुनि तो दे सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक देश दे करके एक देश मोक्ष मार्ग पर लगाना है, लगाना है उसको। तो जिसके पास पूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वही दे सकता है। व्रत नियम आदि लेना भी उसी मुनि के साथ होना चाहिए जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। जिसके पास रत्नत्रय होता है उन्हीं से व्रत नियम आदि लेना चाहिए, हर किसी से व्रत नियम नहीं लिए जाते। समय शिखर गए, रास्ते में मुनि महाराज मिल गए, महाराज हमारे लिए कोई एक नियम दे दो। वहां से एक नियम ले लिया, उनसे एक ले लिया, इनसे एक ले लिया, उनसे इकट्ठा कर लिया नियम, और उनमें दोष आने लगा तो और नए महाराज के पास जाकर के पूछने लगे, महाराज ये दोष हुआ था, क्या प्रायश्चित है इसका? किसी से लिया नियम और प्रायश्चित और किसी से मांग रहा, पूछ रहा, गलत है ये। जो नियम जिससे लेते हैं उसी से प्रायश्चित लिया जाता है। जब बीमार पड़ जाते हैं तो औषधि लेते हैं, जिस डॉक्टर से औषधि लेते हैं उसी डॉक्टर से औषधि लेकर के आप ठीक होते रहते हैं। बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओगे। वो अच्छा असर नहीं पड़ता, वो डॉक्टर और दूसरा राय देता है, और जो बीमारी ठीक भी हो रहे थे तो उसमें वृद्धि और होगी। दवाई तो चल भी जाए कि इससे अच्छा डॉक्टर को जो है उससे हम पूछ लें, दवाई चल भी जाए, मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं चलता। गुरु को भी एक ही बार चुनाओ, एक ही बार चुन लो जो सही है और उत्कृष्ट है, फिर जो भी औषधि प्रायश्चित की उन्हीं से कांटेक्ट रखना। उन्हीं से कांटेक्ट रखना तब कल्याण होता। अज्ञानी गुरु शिष्यों का कल्याण नहीं कर पाएगा। शिष्य का चारित्र निर्दोष रह नहीं पाएगा। रत्नत्रय की साधना विशिष्ट नहीं हो पाएगी, मलिनता रह जाएगी, पूरा सक्सेस जीवन सक्सेस नहीं हो पाएगा। चाहते थे हम सुख धर्म का सुख, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी, जीवन व्यर्थ जाएगा। नुकसान ये है कि करना जो चाहते थे वो कर नहीं पाए। गुरु कितने बड़े निमित्त होते हैं, बहुत बड़े निमित्त होते हैं वो, और निमित्त अच्छा है तो कल्याण भी उत्कृष्ट है, निमित्त अच्छा नहीं है तो कल्याण भी उत्कृष्ट रूप से नहीं होगा। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, गुरु ठीक नहीं निकले, गुरु तो बनाया है, छोड़े कैसे? समस्याएं आती कई लोगों को, महाराज हम उनको छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़े पूछने आते लोग। गुरु बनाया है तो छोड़ क्यों रहे हो? महाराज कुछ गड़बड़ी है तो बनाया क्यों? क्या करूं, अज्ञान अवस्था में तो मालूम नहीं था, बना लिया, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे छोड़े? समस्या भी आ रही है, कैसे छोड़े कि नहीं छोड़े, छोड़े कि नहीं छोड़े, गुरु में दोष भी दिख रहा है और छोड़े कि नहीं छोड़े, कैसे विचार करते हो? छोड़ना पड़ता है क्या? जिसमें दोष है वो गुरु होते ही नहीं है, फिर गुरु क्यों मान बैठे अभी तक? वो तो उसी समय छूट गया था जब दोष था। तो शुरू से ही दोष था तो शुरू से ही गुरु नहीं थे, वो तुम्हारे थे नहीं और तुमने भ्रम में अपना लिया ये गुरु हैं। भ्रमित हो गए, मुझे क्या मालूम महाराज, बहुत लोग जा रहे थे इसलिए मैं भी उसमें से एक गया बहुत लोग पीछे लगे थे इसलिए मैं भी गया। गुण और दोषों को नहीं देखा हमने, लोगों को देखा ये जा रहे हैं तो ठीक ही होंगे, आजमास गुरु को आजमास बनाया जाता है, गुरु का चुनाव आजमास किया जाता है क्या? नहीं, पहले गुरु बनाने से पहले शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में गुरु का जैसा लक्षण लिखा है उस लक्षण को दिमाग में पहले रखो, वो लक्षण गुरु में दिखते हैं क्या नहीं, और फिर यदि दिखते हैं तो फिर ये भी परीक्षा करो गुरु की कि हमारी जिंदगी का निर्वाह इनसे हो सकेगा क्या नहीं, फिर अर्पित कर दो अपने आप को। जिंदगी का सवाल है ना, जब जब मैं भटकूंगा गुरु रोकेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जब मैं भटकता हूं वहां गुरु की जरूरत होती है, जहां मेरा दिमाग नहीं चल पाता है वहां गुरु की आवश्यकता होती है, उतने मात्र के लिए एक गुरु चाहिए, और गुरु मिल गए तो उनको पूरा समर्पित कर दो और पूरी मन की बातों को, जो धर्म में दोष आते नहीं आते, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है रत्नत्रय, ये मन से पूछो अपने मन से, कैसा है रत्नत्रय, रत्नत्रय में कोई कमी आ रही है तो गुरु के सामने रखो, महाराज ये नियम तो लिया है ये दोष आ रहा है, ये नियम तो लिया है ये ऐसा कारण बन रहा है, कैसा करना चाहिए? तो गुरु जैसे मार्गदर्शन देंगे वो हित का ही मार्गदर्शन देंगे, ऐसा चलो निर्दोष होगा, ऐसा चलो निर्दोष होगा, विवेक का मार्ग बताएंगे। विवेक का मार्ग ज्ञानी गुरु ही बता सकता है, विवेकी गुरु ही बता सकता है, ज्ञानी का मतलब विवेकी, किस संदर्भ में कैसे चलना विवेक देता है गुरु। और हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु, सच्चा गुरु होना आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति का जीवन भटकता रहता है। 60% लोगों का जीवन तो ऐसा भटकता है कि इस गुरु का मानो कि उस गुरु का मानो, इसको मानो कि उसको मानो, जिंदगी उसमें गया, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, गुरु बनाया ही नहीं, केवल सोच में गया, जमलिंग में गया, केवल जमलिंग में ही निकल गया, कल्याण हुआ ही नहीं। आत्म कल्याण करना तो अपने हाथ की बात है, किंतु उस मार्ग में एक सहयोगी भी चाहिए पड़ता, जहां हम भटकते अटकते वहां आगे बढ़ाने के लिए दिग्दर्शन करना, मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले एक चाहिए पड़ते रखना। अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो एक दर्पण अवश्य रखना, आवश्यक है कि नहीं? दर्पण एक दर्पण भी आवश्यक है। शरीर तो हमने सुंदर बना लिया अपने हाथों से, जहां तक हमारे हाथ पहुंचते हैं कर लिया हमने काम, लेकिन कहीं आंखें नहीं पहुंचती, वहां दर्पण तुम्हारे आंखों को पहुंचा देता है। एक दर्पण रखना, गुरु दर्पण के समान है। गुरु में अपने को देखना है, वो आदर्श है, निर्दोष है, गुणवान है। गुणवान में खुद को देखोगे तो खुद के दोष दिखेंगे, दोषवान में खुद को देखोगे तो तुम्हारे दोष नहीं दिखेंगे। उसमें दोष है और उसको गुरु समझ रहे हैं तो मैं भी तो ठीक ही तो हूं, गुरु के समान हूं। दोष है, दोष दिख रहे हैं तो आपके दोष नहीं दिखेंगे। आदर्श में ही जब दोष है तो अपने में गुण नहीं दिखेंगे, और अपने दोषों को हम दूर करके गुण के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। ये बात होती है। इसलिए कहते हैं एक गुरु, एक ही। सच्चे गुरु तो बहुत हो सकते हैं, पर आप अपने आचरण बनाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक को ही चुनाओ, ज्यादा को नहीं। और जो कुछ भी, और भी जो गुरु हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, उनके अनुरूप ही आचरण वो भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वंदनीय है, अर्चनीय है, पूजनीय है, यहां तक उनकी सीमा है। पर तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हजार नहीं चाहिए, एक चाहिए। अलग अलग बताएंगे, वो अपने विवेक से बताएंगे, ये अपने विवेक से बताएंगे। दो को पूछना नहीं चाहिए, हालांकि दोनों से कल्याण हो सकता है, लेकिन पूछना वो ठीक नहीं है। दो से पूछना ठीक नहीं है, विचार अलग अलग आ जाते हैं, क्योंकि आपने लिया किसी और से, पूछा किसी और से, तो उन आपकी समस्या उनको पूरी पता नहीं है, तो अपने विवेक से वो बताने लग जाएं। और बताना भी कर्तव्य उनका नहीं है, बताना नहीं चाहिए, ये भी कहा जिनवाणी में, ये भी विधान है कि जिस शिष्य को तुमने व्रत दे दिया है उसको ही प्रायश्चित देना, और जिसको तुमने व्रत नहीं दिया है उसको प्रायश्चित भी नहीं देना। पूछने के लिए आ जाए तो वो अज्ञानी है, पूछ रहा है, मालूम नहीं उसको, अज्ञानी है वो। अज्ञानी है, अज्ञानता से पूछ रहा है वो। जिसके पास लिया है उसी से प्रायश्चित लेना, उसी से मार्गदर्शन लेना। तो विवेकी गुरु दो हैं, लेकिन प्रायश्चित के योग्य एक ही है। जो विवेकहीन है उनका तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो बहुत दूर है, मोक्ष मार्ग से ही दूर है, उनसे कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए, न पूजा अर्चना का न मार्गदर्शन का लेन देन होता नहीं है। विवेकी गुरु चार हैं, हजार हैं मान लो, तो हजार से आप मार्गदर्शन लेंगे, ने हजार की पूजा अवश्य करेंगे, अर्चना अवश्य करेंगे, दान अवश्य देंगे, किंतु मार्गदर्शन उनमें से जिससे तुमने व्रत लिया है उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। छठा पाठ लगभग पूर्ण हो गया है। ये आठ मूल गुण वाला प्रकरण पहले हो चुका है, अब डायरेक्ट मरण पर आते हैं। एक विषय कल का रह गया था, याद आया, क्या था वो? हाँ, मुनि महाराज को देव लोग आहार नहीं दे सकते, ये बात कल आई थी, अधूरी रह गई, मुझे बोलते बोलते अन्यत्र गया और वो बात रह गई। मुनि महाराज को देव लोग आहार क्यों नहीं दे सकते, और यदि लेते हैं तो मुनि महाराज को क्या दोष है, इसका विचार करना चाहिए। देखो, आहार के 40 दोष, उसमें उद्दिष्ट आदि दोष क्या होते हैं, इससे तो आप परिचित हैं। उद्दिष्ट दोष क्या है? साधु के उद्देश्य से उद्दिष्ट दोष क्या है? साधु के लिए बनाना दोष है और स्वयं के लिए बनाना निर्दोष है। तो ये उद्दिष्ट दोष है। देव लोग कौन से आहारी होते हैं? मांसाहारी। और देव लोग यदि मुनि के लिए आहार बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? समझ में आया ना? हाँ, समझ रहे? खुद के लिए बनाएंगे क्या? तो हाँ, तो वो जो आरंभ सारंभ हिंसा आदि आहार के प्रति करेंगे वो किसको उद्देश्य बना करके होगा? उनको लक्ष्य में रख करके जो हिंसा की जाती है वो हिंसा से निर्मित आहार साधु को स्वीकार नहीं होता, वो पूर्ण उद्दिष्ट होता है। अब देवों ने बनाया, मुनि के लिए बनाया, बनाने के बाद देते समय नवदा भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा क्या? नहीं, नवदा भक्ति क्या क्या बोलना पड़ेगा? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना पड़ेगा। अब मन शुद्धि बोला, ये झूठ है क्या? नहीं, आहार स्वयं के लिए बनाया है ये कहना चाहिए। मन शुद्धि का मतलब हमने अपने लिए बनाया है, ये मन शुद्ध है, और दूसरे के लिए बनाया है तो झूठ बोल रहे हैं। मन शुद्धि का मतलब मैंने अपने लिए बनाया है, तो देव लोग झूठ बोल करके आहार देंगे इसलिए आहार नहीं ले सकते। हम अपने लिए बनाए हैं ये झूठ बोलेंगे वो और आहार कराएंगे तो नवदा भक्ति नहीं है। और मुनि का ये नियम होता है कि नवदा भक्ति से ही हम आहार लेते हैं। एक श्रावक मुनि को आहार दे रहा है तो जैसे कोर्ट में 3 बार जज बुलवाता है एक बात को, वैसी बात आहार के टाइम में मुनि बुलवाते हैं। बाहर भी एक बार बोलो, अंदर एक बार बोलो, और जब देते हैं उस समय में भी अगर संशय आ गया तो फिर बोलो। 3 बार परीक्षा होती है आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि की। ये शुद्धि क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए कि उसका अज्ञानता से किया हुआ पाप कहीं साधु पर ना आ जाए। भोजन तुमने अपने लिए किया है, ठीक, किया है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो वह जीवन है, उतना पाप तो होता ही है, भोजन संबंधित पाप तो होता ही है, और उसी में तुम्हारा धर्म पलता है। पात्र को उसी में से आहार दान दोगे, ये तुम्हारा धर्म पल रहा है, पर पात्र के लिए ही हिंसा कर चुके हैं, भोजन पका चुके हैं, तो पूरा श्रेय पात्र पर जाएगा, वो पाप पात्र पर जाएगा। और पात्र जानबूझकर उसको लेता है तो आता ही है, उद्दिष्ट को उद्दिष्ट समझते हुए भी अगर पात्र ले लेता है तो पात्र जानबूझकर उस पाप को अपने सिर पर लेता है। कितना बारीक है जैन धर्म, कहां मांसाहार और कहां शाकाहार, और शाकाहार में भी पाप पुण्य का सवाल, तभी तो मोक्ष मिलता है। सबसे बड़ा आदर्श निष्पाप व्यक्तित्व यदि कहीं है तो दिगंबर मुनि में है, इतना बारीक चलते हैं। आपके द्वारा किया हुआ भोजन भी वो नहीं लेते, उनके उद्देश्य बनाया हुआ, कितना बारीक चल रहे हैं। और ये चारित्र है, आहार का शुद्धिकरण किसमें आता है, ये चारित्र की कोटि में आता है, सम्यक दर्शन के कोटि में नहीं, ज्ञान के कोटि में नहीं, ये चारित्र है। 40 मूल गुण रहित आहार ग्रहण करना, ये एषणा समिति है, और एषणा समिति 28 मूल गुण में है, 28 मूल गुण ये चारित्र है, चारित्र की कोटि में आता है इस प्रकार का आहार, निर्दोष आहार ग्रहण करना। और मुनि को विवेक न हो और 40 दोषों का ज्ञान न हो तब क्या होगा, मुनि का चारित्र बचेगा क्या? 40 मूल गुणों दोषों का 40 दोषों का ज्ञान ही न हो तो मुनि निर्दोष चारित्र पालन नहीं कर सकता। अब एक बात इसमें हम कहना चाहते हैं, श्रावक अगर निर्दोष है तो ही मुनि का व्रत निर्दोष पल सकता है, श्रावक निर्दोष नहीं है तो मुनि का व्रत भी निर्दोष पल नहीं सकता। और श्रावक का ही जैसा आहार वो अविवेक से ले रहा है, वही आहार अगर मुनि करते हैं तो मुनि का चारित्र तो है ही नहीं, संयम आया ही नहीं, छठा सप्तम गुणस्थान बना ही नहीं। मुनि को कौन सा आहार चलता है ये प्रश्न आता है, तो मुनि को वही आहार चलता है जो श्रावक नैष्टिक श्रावक है, नैष्टिक श्रावक है, नैष्टिक श्रावक जिस विधि से अपने लिए स्वयं के लिए भोजन बनाता है वो भोजन मुनि के लिए चलता है, पाक्षिक श्रावक का नहीं चलेगा। या पाक्षिक श्रावक से भी नीचे है उनका भी आहार नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोई पदार्थ को छानबीन नहीं करेंगे, मर्यादित भोजन नहीं करेंगे, ये जिस किसी प्रकार का भोजन करते हैं, भक्षापक्ष इनको विवेक नहीं है, लेकिन नैष्टिक श्रावक को पूरा विवेक रहता है, प्रतिमाधारी नैष्टिक श्रावक वो पूरा ध्यान रखता है, पानी छाना करके जीवानी किया क्या नहीं किया, ये जीवानी कर रहा है छोड़ रहा है, ये किस लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है क्या साधु के लिए, ये अहिंसा अनुव्रत किसके लिए है, खुद के लिए। जब आप चौका लगाते हैं भले ही 8-10 दिन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों ना लगा रहे हों, उस समय आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम 10 दिन के नैष्टिक श्रावक बने। नैष्टिक श्रावक जैसा भोजन करता है, जिस शुद्ध विधि से करता है, वैसा हम भोजन तैयार करें और हम खाएं, अपने लिए बनाएं। नैष्टिक श्रावक बने, 10 दिन के लिए नैष्टिक श्रावक बने और हर पदार्थ मर्यादा में, आटा मर्यादित है, दूध मर्यादित है, पानी मर्यादित है, हर चीज मर्यादित है, काल मर्यादा में, काल मर्यादा के भीतर इन पदार्थों को उपयोग करता है। वो चौका लगाने वाला श्रावक नैष्टिक श्रावक ही है 10 दिन का। ये क्रियाएं साधु के लिए कर रहा हो वो बिल्कुल गलत है। छान रहा है साधु के लिए, ला रहा है साधु के लिए, पका रहा है साधु के लिए, ये बिल्कुल गलत है। और साधु के लिए पका रहा है तो साधु का कोई भरोसा थोड़ी है कि आएंगे, वो तो अपनी चर्या को देख करके आएंगे, आपकी भोजन प्रवृत्ति को देख करके आएंगे। और भोजन प्रवृत्ति में दोष है तो क्यों आएंगे? तुमने हर चीज उनके लिए बनाया है, क्यों आएंगे वो? और यदि हर चीज उनके लिए बनाया है और वो नहीं आए तो विकल्प होगा कि नहीं होगा? हमने तो 3 बजे उठ करके सब बनाया था और महाराज आए नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, महाराज पानी फेर देते अपने इस परिश्रम पर। तुमको अंतरंग में व्यथा होगी कि नहीं? अब ये गया, किया कराए सब डूब गया। तुमने 3 बजे उठ करके सब किया लेकिन कोई काम में नहीं आया, वो पुण्य लगा ही नहीं, व्यर्थ गया, वो गया पानी में। उनके लिए बनाया ही क्यों? पहला प्रश्न ये, उनको उद्देश्य में रख करके बनाया, उसी समय से तुम्हें पुण्याश्रव नहीं हो रहा है, उसी समय से नहीं हो रहा है। अब आप और सोच रहे हैं, उनके लिए तो बनाया ही है लेकिन उनको देने पर मुझे पूर्ण पुण्य मिलेगा, ये और अंधकार है। देने पर तो और पाप लगेगा, पुण्य कहाँ लगेगा? हाँ, सोच के दिया तो, मैंने तो बनाया है और बनाने के उपरांत अगर दे दूंगा भरपूर 100% पुण्य मिलेगा, ये भ्रम है। और दे दिया तो पाप हो गया। उद्दिष्ट है वो, उद्दिष्ट वो देने योग्य है ही नहीं आहार। और यदि दे दिया तो पाप ही लगा है, पुण्य कुछ आया नहीं है। पुण्य आना तो दूर, पाप लग गया है। कितना विवेक रखना पड़ता है श्रावक को भी, श्रावक को भी मूलाचार पढ़ना पड़ेगा, 40 दोष क्या हैं इसको देखना पड़ेगा। अज्ञानी श्रावक पुण्य नहीं कमा पाता। मान के चलिए कि साधु मेरे लिए नहीं बनाया है, ये मेरे लिए बनाया नहीं है ऐसा विश्वास करके आए और उसको ले भी लिया, तो साधु को तो दोष नहीं लगा। उनको क्या मालूम एक एक कैसा बना है। पर जो देने वाला दाता है उसको तो बिल्कुल पुण्य आया ही नहीं, साधु को पता नहीं चला, साधु ने विश्वास किया कि मेरे लिए नहीं बना है, निर्दोष है, तो साधु के लिए बिल्कुल पाप नहीं लगा, उनका तो धर्म पल गया निर्दोष। पर उनको जो आहार दान दिया गया श्रावक को पुण्य नहीं आया, सब धुल गया, सांप मैदान, मैदान ही सांप है। क्यों? उनके लिए बनाया, और उनके लिए बनाया था और दस दिन नहीं आए तो ये रो रहा है, कारण नहीं समझ रहा है क्यों नहीं आ रहे हैं, ये रो रहा है, अज्ञानी है, गुण दोष समझता नहीं है। आहार की तैयारी में कहीं दोष है तो साधु नहीं आ सकते। ये भोजन कहीं उनका है, साधु नहीं आ सकते। और ऐसा सदोष भोजन उनके उद्देश्य बना करके आप हजार साल भी दे दो तो तुमको पुण्य इकट्ठा होने वाला नहीं है। रोज रोज भी भोजन देते रहो साधु को, पुण्य इकट्ठा होने वाला नहीं है। तो क्या कहा है, कैसा देना आहार साधु को? खुद को 10 दिन का नैष्टिक श्रावक बनाओ, प्रैक्टिस करो नैष्टिक श्रावक बनने का। और नैष्टिक श्रावक के लिए नियमावलियां, वही नियमावलियां हैं जो साधु के लिए। कैसा होना, छना हुआ पानी। कैसा होना, बिल्कुल मर्यादित आटा, मर्यादित दूध, ये जुटाओ, जुटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम नैष्टिक श्रावक नहीं। नैष्टिक श्रावक के लिए भी वही भोजन आवश्यक है जो भोजन तुम साधु को देते हैं, उतना ही शुद्ध भोजन नैष्टिक श्रावक करता है। उस भोजन के देने से और लेने से दोनों को 100-100% लाभ है, 100% पुण्य कमा लिया श्रावक ने भी, 100% निर्दोष हुआ साधु, साधु का भी आचरण, चारित्र में कोई दोष नहीं आया। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, महाराज ये तो पंचम काल है, पंचम काल क्या करता है, अविवेकी बनो, ऐसा कहता है। पंचम काल में क्या विवेकी नहीं बन सकते? क्या नैष्टिक श्रावक की तरह चर्या नहीं निभा सकते 10 दिन? साधु को दो तरह से दोष आते हैं, एक उनके उद्देश्य बनाने पर, दूसरा उनको निमंत्रण से ले जा नहीं सकते। उनका निमंत्रण का भी त्याग है और उद्दिष्ट का भी त्याग है। निमंत्रण का त्याग क्यों कराया जाता है? साधु निमंत्रण देने पर आते नहीं, क्यों? निमंत्रण तो वही देता है जो उनके उद्देश्य से बनाता है। निमंत्रण तो वही देता है जो उनके उद्देश्य से बनाता है, वही निमंत्रण देने के लिए आता है, और साधु स्वीकार नहीं करते। तुम बुलाने आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, तुम प्रतीक्षा करो, मैं जिस जहां पसंद आएगा वहां जाऊंगा, ये मेरी निर्दोषता है, मैं अपनी चर्या को निर्दोष रखूं, ये मेरे लिए प्रथम आवश्यक बात है। और तुम जो बुलाते हो ये दोष है, बुलाना नहीं है, ये अज्ञानता है, ये उल्टा मार्ग है। साधु को पड़गाया जाता है, प्रतीक्षा की जाती है, अतिथि आने का समय हो गया तो घर के बाहर जाकर के प्रतीक्षा करना कर्तव्य है। भरत चक्रवर्ती 10 बज गया तो बाहर जाकर के खड़ा होता था, साधु कोई आए ना आए, और अकस्मात आ जाते थे, कोई चारण रिद्धि आकाश मार्ग से उतर रहे हैं कि ऐसे देखते हुए खड़े रहते थे, रोज खड़े रहते थे प्रतीक्षा के लिए। उसका एक पीरियड होता है, साधु इतने पीरियड के अंदर आते हैं, 12 बजे से पहले, 10 बजे के बाद, उतने पीरियड तक भोजन नहीं करते थे वो। प्रतीक्षा करूंगा साधु आए या ना आए, नित्य प्रतीक्षा करता। आ गए तो अहो भाग्य, आ गए, मेरा भाग्य था आज अतिथि मिल गए। पड़गा लेते थे, आहार कराते थे, आहार कराने के पश्चात खुद आहार करते थे। नित्य प्रतीक्षा होती है साधु की, पर नित्य प्रतीक्षा कौन कर सकता है? जो नैष्टिक श्रावक है। और वो नैष्टिक श्रावक नैष्टिक प्रतिमाएं प्रतिमाओं को लिया हो या नहीं लिया हो, सवाल इतना है कि नैष्टिक श्रावक जो भोजन करता है वो भोजन कर रहा है क्या नहीं, सवाल ये है। नैष्टिक श्रावक बना है या नहीं बना इसका कोई महत्व नहीं, महत्व है नैष्टिक श्रावक की तरह भोजन वो करता है क्या नहीं। ये और नैष्टिक श्रावक की तरह भोजन करता है तो प्रतिमाधारी हो या ना हो, साधु का आहार वहां हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आगम के अनुरूप चर्या इसी को बोलते हैं। एक जगह कहीं धर्मशाला में व्यवस्था बना करके साधु को आहार करा दिया, कितना गलत है। उद्देश्य पूर्वक हुआ, व्यवस्था की, और कहते भी हैं महाराज आहार की भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, व्यवस्था व्यवस्था किसके लिए, खुद के लिए कि उनके लिए? व्यवस्था कहने पर उन्हीं के लिए हो गए ना, उद्दिष्ट है पूरा वो। व्यवस्था नहीं अवस्था आपकी नैष्टिक श्रावक की होना। तुम भोजन कहीं भी कर लेना, धर्मशाला में कर लेना चाहे घर में कर लेना, पर तुम नैष्टिक श्रावक हो क्या नहीं, सवाल ये है। तुम भोजन शुद्ध कर रहे हो क्या नहीं, सवाल ये है। वो भोजन जो तैयार हो गया वो तुम्हारा है कि साधु का है, सवाल ये है। यदि तुम्हारा है और कहीं भी करो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आचार्य श्री जहां चातुर्मास करते हैं वहां एक भी घर नहीं होता, सब लोग वहीं जाते हैं, तो क्या व्यवस्था करने के लिए जाते होंगे, साधुओं को चौका लगाने के लिए जाते होंगे? और चौकाओं की भीड़ रहती है, नंबर नहीं लगता, साधु मिलते नहीं। 40 साधु हैं तो 100-100 चौके लग रहे हैं, 150-150 चौके लग रहे हैं, तो चौके लग रहे हैं साधु के लिए या श्रावक अपने लिए लगा रहा है? दान का लाभ उठाने के लिए वहां जाकर के शुद्ध भोजन बना करके खुद के लिए खुद खा रहा है, पहले खुद के लिए बना रहा, साधु उसमें आते हैं उसको भी आहार करा रहा है। साधु गांव में नहीं आ सकते, गांव तो बहुत दूर दूर हैं। साधु ने वहां चातुर्मास किया जहां पर लोग थे नहीं, और वहां जाकर के श्रावक चौका लगा रहा है, तो क्या उद्दिष्ट है? क्या व्यवस्था करने गया साधुओं का? व्यवस्था नहीं, साधु जहां जाता है वहां श्रावक रहता है, जहां श्रावक रहता है वहां साधु रहता है। जिस देश में श्रावक ही नहीं वहां साधु नहीं जा सकता, जिस देश में साधु श्रावक हैं वहां साधु बन सकता है, कोई रह सकता है, क्योंकि उनकी चर्या पूरी तरह से निर्दोष श्रावक पर टिका हुआ है। एक भोजन के निमित्त से और कुछ नहीं, एक क्षुधा वेदनी, एक भूख न होती तो साधु को किसी भी देश में जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी देश में जा सकता है, उनकी चर्या निर्दोष रहेगी। पर एक आहार चर्या के लिए वहां रहना पड़ता है जहां पर उसकी चर्या पलती है। 46 दोष हैं, इसको टालो। सौ चौके लगते हैं तो 100 व्यवस्था की व्यवस्था करना हो तो फिर 50 साधु हैं तो 50 चौके लग जाए। और यहां से वहां उठ करके जा रहे हैं, वहां चौका लगा रहे हैं, भावना देखो, भावना देखो पहले, कितना उत्कृष्ट भावना, व्यवस्था बना के नहीं आ रहे हैं। 50 साधु हैं तो अपन चले कि 50 चौके लगाते, श्रावक सोचता है मैं शुद्ध भोजन कर रहा हूं तो एक तो साधु मिलेंगे मुझे, मैं कर रहा हूं तो एक तो साधु मिलेंगे, इस भावना से जाता है। भोजन अपने लिए बनाता है, धर्मशाला में बना रहा है, लेकिन किसके लिए बना रहा है, स्वयं के लिए बनाता है, फिर प्रतीक्षा करता है। मान के चलिए उस दिन 2 साधु मिल गए, पड़गान हुआ तो पहले 2 साधुओं को भोजन कराता है, फिर बाद में वो भोजन खुद के लिए कम भी पड़ गया तो बना के खा लेता है, वो बना के खा लेता है। वो यही धर्म है उसका। साधु के लिए नहीं बनाएगा, बनाएगा सबसे पहले अपने जितने सदस्य हैं घर में उन सब के लिए बनाएगा, और फिर भोजन साधुओं को कराने के बाद, 4 साधु भी आ गए उनको कराने के बाद अगर भोजन कम पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, श्रावक तो और बना सकता है और खा सकता है, उसका आरंभ सारंभ त्याग थोड़ी। और 4 साधु नहीं, एक ही साधु आ गए तो 4-5 लोगों के लिए जो भोजन बन गया था परिवार के लिए, तो उसमें से एक साधु आराम से भोजन करके निकल सकता, भोजन कम नहीं पड़ेगा। ये निर्दोष पुण्य कमाने का रास्ता क्या है वो सोचो। दान देने से पहले, दान देना जल्दबाजी नहीं, दान कैसे देना इसकी जल्दबाजी करो कि कैसे देना चाहिए। कभी प्रसंग ऐसा आता है साधु 10-20 आ गए और वहां पांच ही घर थे और एक एक घर में 5-5 सदस्य थे। साधु संघ आया 20 जनों का, थोड़ा सा तर्क करके देखना तो भोजन कितने लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। समस्या आएगी कि नहीं, हा? तो 5 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा तो 20 साधु कैसे जीमेंगे उसमें। पांच ही घर, पांचों घर वाले खड़े हैं, मान लो पांच लोगों के लिए पांच पांच लोगों का भोजन तैयार हो गया पांच घर में, और साधु आ गए, बीस बीस से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो आ गए, तो उसमें सब साधुओं को क्या थोड़ा थोड़ा खिलाओगे? पेट भर खिलाओगे, लेकिन पेट भर खिलाने के लिए उद्देश्य बनाओगे क्या कि साधु बहुत हैं तो ज्यादा भोजन हम पकाएंगे? तो पकाना तो ज्यादा ही पड़ेगा, पेट भर खिलाना हो तो साधु के उद्देश्य पकाना पड़ेगा कि नहीं? तो पकाना पड़ेगा, लेकिन साधु के उद्देश्य पकाओगे क्या? अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया, और उतना भोजन पांच लोग करोगे क्या फिर बाद में? बीस लोगों के साधुओं का भोजन मान लो पांच लोगों ने बनाया पांच घर में, तो आपके घर में तो सीमित लोग हैं, पांच लोग, पांच लोग उतना भोजन करेंगे क्या? दस लोग भोजन करने लायक भोजन पांच लोग करेंगे क्या एक एक घर में? नहीं करेंगे। तो दस लोग भोजन करने का एक्स्ट्रा भोजन जो आपने बनाया वो किससे उद्देश्य बनाया, प्रश्न उठ रहा है। साधु को देख करके तो बनाया, हाँ? फिर वो दोष है कि नहीं? तो साधु क्या करे? क्या पांच लोगों के लिए जो भोजन बना है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के प्रसाद के रूप में जाए? श्रावक क्या करे फिर? वो भी कम पड़ गया तो क्या करेंगे? पांच साधु के लिए बनाने का, तो साधु के लिए बनाने का हो रहा है ना? हाँ, पांच घर के लिए बनाने का। हाँ हाँ ठीक है। किंतु अतिथि समीभाग वो कहलाता है, निर्मित भोजन में साधु को भी देना और स्वयं भी खाना, ये अतिथि समीभाग है। सामान्य डेफिनेशन उसका ये है अतिथि समीभाग का। अब साधुओं की संख्या के साथ आपके घर की संख्या या गांव की संख्या एडजस्ट नहीं हुई तो अतिथि समीभाग कैसे घटित करोगे? उस भोजन में खुद को प्रसाद लेना पड़ेगा और साधु को फूल फूल जिमाना पड़ेगा, ऐसा होगा वो? परंतु उद्देश्य किसका रहेगा? स्वयं का ही रहेगा। दूसरी बात, दूसरे के लिए तो आप बनाएंगे नहीं, यदि बनाया है तो दूसरे को लेकर के उनको साथ में लेकर के खाओगे? अन्य अतिथि श्रावक जो बाहर से आए उनको लेकर के साथ लेकर के खाओगे? उनके उद्देश्य से बनाया, उनके लिए बनाया भोजन भी साधु को नहीं चलता। वो सार्वजनिक भोजन हो गया। नहीं, चार प्रकार के दोष बताए। किसी देवता के निमित्त से, लोक मूर्ता के आधार से लोग बनाते हैं, देवता के निमित्त से बनाया आहार साधु को नहीं चलता। वो परड़गी छोड़ने के लिए बनाया हुआ साधु को वो नहीं चलता। सामूहिक भोजन जो बनता है सार्वजनिक, आज के दिन आपके यहाँ 20 लोग आने वाले थे और आपने भोजन बना दिया, साधु भी आ गए और शोधन भोजन तो शुद्ध ही है, तो वो सार्वजनिक के उद्देश्य जो बनाया है आपने वो साधु को नहीं चलता, भले ही वो शुद्ध हो, मर्यादित तो वस्तुओं से हो, पर उद्दिष्ट उनके लिए है। वो उस उद्दिष्ट का इनको दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें विकल्प हो सकते हैं। उनके लिए बनाया था और इनके लिए दे दिया, तो उनके लिए विकल्प हो सकता है जिसके लिए बनाया है। तो सब जगह से आपको निर्विकल्प रखने के लिए और निर्दोष रखने के लिए रास्ता निकाला गया है। भगवान ने बहुत गहरा सोचा है इस संबंध में, बहुत गहरा चिंतन हुआ है तीर्थंकरों का। भोजन करने में भी इतनी गहरी चिंतन, और उसमें 40 दोष निकाले, 40 दोष निकाल करके रखे, ऐसा भोजन हो तो नहीं करना। और इस टाइप के भोजन में किसी को विकल्प नहीं होता, किसी को त्रास नहीं होता, किसी को